சச்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். மஞ்சீர நூபூரணன் நவரத்ன காஞ்சி ஸ்ரீஹார கேசரி. ஆஜ் மகாமஹிமாமயி ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ஹை. வைவஸ்வத மன்வந்தரி அஷ்டாவிஷ சதுர்யுகே த்வாபர கே அந்த மே பாத்ர மாஸ கீ கிருஷ்ணாஷ்டமி கே தின் பிருத்வீ கோ யே மஹான் சௌபாக்ய ப்ராப்த ஹுவா. அகில விஸ்வ பிரம்மாண்ட கே லியே ஆஜ கா யே மங்களமய தின் மஹான் மஹிமாமய மஹான் மதுமய ஔர் மஹான் மமதாமய ததா பரம தன்ய ஹை. ஆஜ கே ஹி தின் அசுரோ கே அத்யாச்சார சே உத்பீடித் காமனா வாசனா துக்க தைன்ய ஔர் தாரித்ர்ய ஆதி கே தீவிர தாரண சே சந்த்ரஸ்த ஔர் க்ஷத விக்ஷத் பஹிர்முகதா எவம் ஜடபாத சே ஜர்ஜரித் ஔர் பிரேம சுதா ரஸ தாரா சே ரஹித் சர்வதா சுஷ்க ஜகத் மே அகில ரசாமிருத சிந்து ஷடைஸ்வர்ய பூர்ண சர்வலோக மகேஸ்வர ஸ்வயம் பகவான் கா ஆவிர்பாவ ஹுவா தா. பகவான் கே அவதார மே க்யா ஹேது ஹை யே பகவான் ஹி ஜானதே ஹை. பரந்து பிரதான ஹேது பிரதீத ஹோதா ஹை பகவான் கி அப்னே கனீபூத பரமானந்த ரஸ லீலா விக்ரஹ கோ பிரகட் கர்னே கி மங்களமயி இச்சா. வைசே சாது ஜனோ கா பரித்ராண துஷ்டோ கே விநாஷ கே த்வாரா பூமி கா பார ஹரண ஔர் தர்ம சம்ரக்ஷண யா தர்ம சம்ஸ்தாபன கே மங்களமய காரிய பி ஸ்ரீ பகவான் கே அவதீர்ண ஹோனே மே காரண பதலாய கே ஹை. ஸ்வயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே ஹி கீதா சதுர்த்த அத்யாய கே ஆட்டவே ஸ்லோக மே கஹா ஹை பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. சாது புருஷோ கே பரித்ராண துஷ்டோ கே விநாஷ் ஔர் தர்ம சம்ஸ்தாபன கே லியே மே யுக யுக மே உத்தம ரீதி சே பிரகட் ஹோதா ஹூ சம்பவாமி. பர் கேவல் யஹி காரண நஹி ஹை பகவான் நே ஹி இஸ்கே பஹலே சட்டே ஔர் சாத்வே ஸ்லோக மே குச் பின் சங்கேத் பி கியா ஹை. அஜோபி சன்னபே ஆத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயையா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் தர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். மை அஜன்மா அவ்யயாத்மா ஔர் சமஸ்த பூதோ கா ஈஸ்வர ரஹதே ஹுயே ஹி அப்னி பிரகிருதி கோ ஸ்வீகார கர்கே அப்னி யோக மாயா சே அர்த்தாத் யோக மாயா கோ சாத் லேகர் உத்தம ரீதி சே பிரகட் ஹோதா ஹூம். ஜப் ஜப் தர்ம கி க்லானி ஔர் அதர்ம கா அப்யுத்தான ஹோதா ஹை தப் தப் மை அப்னே கோ பிரகட் கர்தா ஹூம். இன்மே சட்டே ஸ்லோக மே அஜன்மா அவிநாஷி ஔர் சர்வபூத மகேஸ்வர ஹோகர் பி ஜன்ம லேனே அந்தர்தான ஹோனே ஔர் சோட்டே சே பராதீன பாலக பன்னே கா சங்கேத கர்கே விருத் தர்மாஸ்ரயி ஸ்வயம் பகவான் நே கே பூர்ண ஆவிர்பாவ கே பாத் கஹி கயி. ஔர் சாத்வே ஸ்லோக மே சதுபதேஷ கே த்வாரா தர்ம க்லானி ரூப அதர்ம கே அப்யுத்தான கா நாஷ கர்னே வாலே ஆச்சாரியாவதார கி அத்வா காம கலுஷித் விஷய சேவன ரூப அதர்ம கே அப்யுத்தான கோ த்வம்ஸ கர் பரம த்யாகமய மதுரத்தம் கோபி பிரேம தர்ம கே சம்ஸ்தாபன கர்னே கி ஓர் சங்கேத் கியா கயா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான் ஹை அதேவ் உன்கே த்வாரா சபி லீலாவோ கா சுசம்பன்ன ஹோனா இஷ்ட ஹை. இஸ்கே அனுசார் உன்கே பிராகட்ய கே பி விபின்ன காரண ஹோ சக்தே ஹை ஔர் வே சபி சத்ய ஹை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே பிராகட்ய கா கால था भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी की अर्धरात्रि और स्थान था अत्याचारी कंस का कारागार। पर स्वयं भगवान के प्राकट्य से काल देश आदि सभी परम धन्य हो गए। 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु प्रतिवर्ष वही पवित्र भाद्र मास, वही कृष्ण पक्ष और वही शुभ अष्टमी आती है और पृथ्वी के परम सौभाग्य की नवीन स्मृति जागृत करके चली जाती है। आज भी इस दिन हम बहिर्मुखी जीवों को न दिखने पर भी पृथ्वी के वक्षस्थल पर एक विलक्षण आनंद का महानृत्य होता है और आज भी सौभाग्यवान भक्तजन इस नित्य स्मरणीय महान मंगलमय तिथि की पूजा, जन्मोत्सव का आयोजन, जन्माष्टमी व्रत का सेवन करके धन्य होते हैं। और आज भी प्रेमी भक्त अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर के आविर्भाव का दर्शन भी कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस आविर्भाव के समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन दिव्य रस सागर हृदय श्री सुखदेव जी ने किया है। आज इस समय इस आविर्भाव के काल में हम उसी का रसास्वादन करें और मन ही मन ऐसा ही चिंतन और ध्यान करें। वे कहते हैं अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः। काल समस्त शुभ गुणों से युक्त और परम शोभन हो गया। ये काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, इससे जगत में कोई उससे प्यार नहीं करता। आज बना कल ये बिगाड़ देगा, परंतु काल के आधार भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करते। वे काल के नियंता होकर भी काल में ही प्रकट होते हैं और काल में ही अंतर्धान भी हो जाते हैं। काल को भगवान यदि ये सौभाग्य न प्रदान करते तो शायद उस बेचारे के दुख का पार नहीं रहता। आज जब काल को ये पता लगा कि परिपूर्णतम स्वयं भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, उसके आनंद की सीमा नहीं रही और अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वो परम शोभन बन गया। उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्रत्येक समय विशेष से चुन चुन कर सभी सद्गुणों को धारण कर लिया और विलक्षण रूप से सुसज्जित हो उठा। बसंत ऋतु का मलय समीर, कोकिल का कूजन, भ्रमर का गुंजन, आम्र में नवीन मौर का उदय, अशोक और चंपा का मुक्त हास्य, वर्षा कालीन कदम्बा अनिल, शरद की स्वच्छता और प्रसन्नता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद कुसुम, दिवस की कमलिनी, रात्रि की कुमुदिनी, प्रातः काल का देव पूजन, कर्म प्रवृत्ति, मध्यान्ह का पवित्र प्रभु सेवा रूप आजीविका कर्म, सायान्ह का देव पूजन तथा सात्विक आनंदोत्सव, निशा का शांत भाव, रात्रि शेष का उत्साहपूर्ण जागरण, सतयुग की तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर की परिचर्या और कलयुग का श्री हरिनाम संकीर्तन इत्यादि काल के भंडार में जहाँ जो सद्गुण थे सभी को अपने में धारण करके वो सर्वांग सुंदर हो गया। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। यजन जन्मरक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम रोहिणी नक्षत्र था। और आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्यादि नवग्रह, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र, जन्म संपत आदि तारे, उग्र शांत वक्र उच्च नीच आदि विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। कर्म फलानुसार काल जब जिसको जैसा कुछ सुख दुख भुगताना चाहता है, ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र शांत वक्र आदि बनकर काल का सहयोग दिया करते हैं। आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभागमन के समय वे सभी अपनी उग्रता वक्रता का परित्याग करके शांत हो रहे हैं और कोई वक्र गति से, कोई अतिचार गति से और कोई महातिचार गति से अपने अपने उच्च स्थानों में स्थित होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने में संलग्न है। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, भगवान ने उसको अपने जन्म के नक्षत्र के रूप में स्वीकार करके परम धन्य कर दिया। ऋषि सुखदेव जी ने रोहिणी नक्षत्र का स्पष्ट नाम न लेकर अजन जन्मरक्षम इस गुप्तार्थ पद के द्वारा रोहिणी का नाम संकेत किया, जिसका साधारण जीवों की भांति कर्म फल रूप जन्म नहीं होता, उनको अजन कहते हैं। उन भगवान के नाभि कमल से जिनका जन्म होता है वे ब्रह्मा अजन जन्मा कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जिस नक्षत्र के अधिष्ठाता हैं, उसका नाम होता है अजन जन्म नक्षत्र, अर्थात रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी के अधिष्ठाता ब्रह्मा है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने या अपने स्वजनों का जन्म नक्षत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। अतएव श्री सुखदेव जी ने भी अपने परम प्रिय श्री श्याम सुंदर के जन्म नक्षत्र को गोपन रखने के लिए स्पष्ट रोहिणी न कहकर ऐसा कहा। जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन होता है, वहां से भी सब पाप ताप विघ्न बाधाएं दूर भाग जाती हैं। वे वहां समीप नहीं रह सकती, वरम विविध प्रकार से सुलक्षण आज उठते हैं। तब स्वयं भगवान जहां पृथ्वी की पीड़ा मिटाने के लिए अवतीर्ण होते हों, वहां वार तिथि नक्षत्र योग आदि के अत्यंत शुभ सूचक होने में कौन सी आश्चर्य की बात है। जगत का प्रत्येक कार्य काल दिशा और देश के अधीन है। इसी से जगत में काल दिशा और देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। यद्यपि श्री भगवान की दिव्य लीला में काल दिशा और देश की कोई बाध्य बाधकता नहीं, वे स्वयं ही काल दिशा और देश के नियंता हैं, तथापि वे जब धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तब काल दिशा और देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध जोड़कर उन्हें धन्य और कृतार्थ कर देते हैं। इसीलिए आज काल की भांति दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो रहे हैं। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो दुगण उदयम, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश में तारे जगमगा उठे, किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गई, सर्वत्र परमानंद पूर्ण स्वच्छता छा गई, सभी दिक्पति परम प्रफुल्लित आनंद पूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभागमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सुसज्जित करके दिग्ग बधुओं के साथ हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। गगन में तारे जगमगा उठे, मानो अपने अपने अनंत अंग पात्रों में स्तर स्तर पर हीरों के पुष्प सजाकर विष्णु पद में अंजलि अर्पण करने की इच्छा से खड़े हो गए। काल और दिशा की भांति देश भी मंगल श्रृंगार से सुसज्जित हो गया। भूभुवस्व सभी देशों में आनंद की बाढ़ आ गई। मंगलमय के मंगल आगमन से सभी देश आनंद मंगल परिपूर्ण हो गए। मई मंगल भूष्ट पूरा ग्राम बजा खरा, पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां, रत्नों की खाने आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। विविध हेतुओं की अवतारणा करके नगरों के मार्ग परिष्कृत तथा सुगंधित हो गए। धनियों के प्रासादों में रोशनी जगमगाने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, बाजे बजने लगे, जगह जगह पूजा और स्तुतियां होने लगी, मंत्रोच्चारण की ध्वनि उठने लगी, खाने रत्नों को स्वयं बाहर फेंकने लगी, नाना प्रकार के नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय के शुभागमन की आनंद धारा बह चली। पृथ्वी के समस्त स्थानों को आनंद मुखरित करके आनंदमय का शुभागमन आनंद मूर्तिमान होकर नद नदी सरोवर अरण्य पर्वत आदि में सभी जगह व्याप्त हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलद वश्रिया, नदियों का जल निर्मल हो गया, रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल उठे, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी गोमती सरस्वती कावेरी शोण सिंधु आदि नद नदियों का मटमैलापन दूर हो गया। उनको मानो अपने जन्मस्थान पर्वत के उस गुप्त गह्वर से ऐसा कोई आनंद समाचार मिल गया कि वे अपने कल कल नाद से उसे पृथ्वी के कानों में सुना रही हूँ और उत्ताल तरंगों के रूप में मानो भुजाओं को उठाकर नाचती हुई बड़े वेग से दौड़ी हुई समुद्र को यह आनंद संवाद सुनाने के लिए दौड़ चली। सरोवरों में असंख्य कमलों की पंक्तियां खिल उठी। मायाबद्ध जीव जैसे स्त्री पुत्र परिवार घर शरीर को छोड़कर अन्य किसी से संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार ये बिचारे सीमाबद्ध सरोवर अपनी सीमा में ही आबद्ध रहा करते हैं। मायाबद्ध जीव पर जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तब वह मायाबद्ध रहता हुआ ही जैसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों की बातें सुनता है और उन भक्तों के द्वारा होने वाली भगवत सेवा के आनंदोच्छ्वास को देखता है, वैसे ही सीमाबद्ध सरोवरों को भी आज श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हुई। किसी से वे कमलों के विकास के बहाने असंख्य कानों से नद नदियों की आनंद पूर्ण कलकल ध्वनि सुन रहे हैं और खुली आंखों से उनके आनंदोच्छ्वास को देख रहे हैं। नदियों को जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला वह श्री कृष्ण अवतार में प्राप्त हुआ। इसी अवतार में श्री कालिंदी जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पट रानी बनी और अवतार लेते ही श्याम सुंदर ग्वाल बालों तथा गोपांगनाओं को साथ लेकर कालिंदी में क्रीड़ा करने लगे। इन बातों को सोचकर नदियां प्रसन्न हो गईं और इस अवतार में भगवान काली दमन करके कालीदह सरोवर को विषहीन बना देंगे, इस बात को सोचकर सरोवरों ने कमलों के बहाने अपने हृदयों को ही श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। मानो वे कह रहे हैं हमारे जीवन का सारा विष अब दूर हो जाएगा। गुजात कृष्णनाद स्तब का बनराज यह, वनों में वृक्षों की पंक्तियां विभिन्न वर्ण के सुगंधित पुष्पों से लद गईं और शुक्र का आदि पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहक उठे तथा मधुपान मत भ्रमरों की गुंजार से सारी वन भूमि मुखरित हो गई। निर्जन अरण्य की शोभा उस समय भला कौन देखता, परंतु उन्हें दूसरों को शोभा थोड़ी दिखानी है, उन्हें तो पूर्ण रूप से सज धज कर स्वांत सुखाए अपना आनंद प्रकट करना है। इसी से उन सब ने भी अपनी सजावट में कोई कमी नहीं रखी। शाल तमाल ताल आम अशोक चंपा मौलसरी वट अश्वत्थ आदि सभी ने अपने पुराने पत्ते फेंक दिए और नए नए कोमल पल्लवों को धारण कर लिया। नए मोर फूट निकले, मोरों के बीच बीच में पुष्पों का विकास हो गया और उन पुष्पों के गुच्छे मृदुमंद पवन के मधुर हिलोरों के साथ नाच नाच कर आनंद प्रकट करने लगे। मालती आदि की लताएं वृक्षों की शाखा प्रशाखाओं से लिपट कर वहाँ मधुर कुसुम हास्य का विस्तार करने लगी। जूही चमेली आदि पत्र शून्य होकर केवल विकसित सुमनों से ढक गई। रात्रि के समय सोए हुए भ्रमर मानो स्वप्न में किसी गुप्त परमानंद संवाद को पाकर सहसा जाग उठे और मधुर गुंजार करते हुए पुष्पों के पास जा जाकर आनंद समाचार का कारण पूछने लगे। शाखाओं पर घोंसलों में सोए हुए पक्षीगण भ्रमरों की झंकार से जागृत होकर अपनी कमनीय काकली से वन प्रांत को निनादित करते हुए अकस्मात उदय हुए आनंद का कारण जानने के लिए इधर उधर वृक्षों पर उड़ने लगे। आम्र वृक्ष में असमय मोर देखकर कोयलों के आनंद की सीमा नहीं रही, वे बड़े वेग से उड़कर शाखाओं पर पहुंच गई और पंचम स्वर से तान छेड़कर आनंद निमग्न हो गई। इस प्रकार सर्वत्र महान आनंद के पूर्ण विकास से समस्त अरण्य सर्वथा आनंद भवन बन गया। यो भगवान श्री कृष्ण का शुभागमनानंद आकाश पृथ्वी और जल को आनंद मत बनाकर अब वायु के निकट पहुंचा। वो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वाशुचि परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सबको सुखदान करती हुई बहने लगी। वर्षा ऋतु के घोर जल वर्षण से वायु में आर्द्रता और बीच बीच में होने वाली कड़ी धूप से उसमें कुछ उष्णता आ गई थी। पर अब श्री भगवान के शुभागमनोत्सव के कारण बसंत के अंत में जो मलय पवन निर्वासित कर दिया गया था वह अपने निर्वासन दंड से मुक्त होकर लौट आया और वर्षाकालीन उस नातिशीतोष्ण वायु के साथ मिल गया। अब दोनों ने मिलकर खोज खोज कर जहां जहां उन्हें सुगंध प्राप्त हुई ले लेकर अपने सारे अंगों पर लगा ली और आनंद मत होकर वे वृक्षों के मस्तकों रमणियों के अंचलों तथा प्रासाद शिखरों की पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। श्री भगवान आ रहे हैं, इसलिए उस समय वायु ने रज को लेकर धूल को लेकर खेलना छोड़ दिया। तो सात्विक आनंद के साथ वे खेलने लगी। इसी कारण अपने स्पर्श से वे सबको सुख देने वाली बन गई। यूं जब श्री गोविंद के शुभागमन आनंद से पृथ्वी मंगलमयी जल कमला आच्छादित वायु सुगंध संपन्न और सुख से भी हो गई और निर्मल आकाश तारा मालाओं से जगमगा उठा तब अग्नि भी निश्चेष्ट नहीं रह सकी। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंचभूत मिलकर ही तो जगत का सारा काम करते हैं। आज जब श्री कृष्ण का शुभागमन महोत्सव आज श्री कृष्ण के शुभागमन महोत्सव के समय इनमें से चार आनंदोन्मत्त हो जाए और अग्नि बाकी रह जाए ये कैसे संभव है। अग्नि अस्त विजाति नाम शांता शत्र समिंधता विजयों के होम कुंडों की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे जल उठी, उन्हें जलाना नहीं पड़ा। लकड़ी के अंदर से अपने आप ही प्रज्वलित होकर वे दक्षिणावर्त हुई जल नाचने लगी। श्री गोविंद के शुभागमन के महानंद में उनके लिए घृत की आहुति मंत्र पाठ अथवा ईंधन की आवश्यकता नहीं हुई। वे अपने आप ही प्रकट होकर होम मंडपों को आलोकित करने लगी। श्री कृष्ण का शुभागमन महानंद बाह्य जगत को प्रमुदित और पुलकित करके अब अंतर जगत में जा पहुंचा। मनाश्यासन प्रसन्नानी साधु राम अश्रद्रोही साधुओं का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया। भगवत भक्तों के हृदय सहसा अजानित असंभावित और अप्रत्याशित आनंद से परिपूर्ण हो गए। कहां से किस लिए कैसे इस परमानंद ने आकर उनके हृदय में प्रवेश किया इसका उन्हें पता नहीं चला। वे आनंद में भरकर पुलकित हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमानंद के सुधा बिंदु झरने लगे और वे सब इस आनंद में के नित्य सत रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। असुर निकंदन श्री कृष्ण चंद्र के शुभागमन की सूचना पाकर असुरों के अत्याचार से उत्पीड़ित देवताओं के हृदयों में भी शांति और आशा का संचार हो गया। असुर समुदाय अपनी भयानक मूर्तियों सहित हिंसा प्रवृत्ति के कारण सभी के अप्रिय होते हैं, इसलिए असुर के अतिरिक्त जीव मात्र असुर द्रोही है। इस सिद्धांत से साधु प्रकृति के सभी असुर द्रोही जीव प्रसन्न हो गए, पर भगवान के भक्तों का सुख तो अवर्णनीय है। बादल से गिरी हुई जल की बूंद मेघत प्रिय चातक को जैसी सुखदायिनी होती है वैसी अन्य किसी को नहीं होती। ये सत्य है कि दूसरों की भी प्यास बुझती है, पर वे केवल मेघ के जल की ही प्रतीक्षा नहीं करते। उनको नद नदी सरोवर झरने बहुत जगह जल दिखाई देता है, कहीं से भी लेकर वे अपनी पिपाशा शांत कर सकते हैं। श्री भगवत चरणाश्रित एक निष्ठ अनन्य भक्तों के आनंद का स्रोत तो केवल श्री भगवान के चरणारविंद ही है। जो लोग भोगाश्रित हैं भगवत चरणाश्रित नहीं है उनके सुख के लिए स्त्री पति पुत्र परिवार जन धन जमीन विषय वैभव मान सम्मान प्रशंसा यश और पदाधिकार आदि अनेक वस्तुएं हैं। इसीलिए वे श्री भगवत चरणारविंद पीत सके दिव्य आनंद का पूर्ण आस्वादन नहीं कर पाते। फिर जैसे बादलों का निर्मल जल भी यदि गंदे कूड़े भरे स्थानों में गिर जाए तो वो निर्मल नहीं रहता, इसी प्रकार भगवान का परमानंद नित निर्मल होने पर भी जिन लोगों का जीवन कामना वासना भोगासक्ति भोग सुखास्ता रूपी गंदे कूड़े से भरा है वे उस परमानंद को भी विषानंद बना लेते हैं। जैसे अत्यंत उत्तप्त स्थान पर गिरी हुई जल की बूंदें प्रति सूख जाती हैं तथा ताप और भी बढ़ जाता, वैसे ही अविश्वास भोगासक्ति और बहिर्मुखता से उत्तप्त जीवों के समीप पहुंचा हुआ भगवत संबंध जनित आनंद बिंदु भी उनकी भगवत विमुखता के कारण तुरंत उनके लिए लुप्त हो जाता होता और उन बहिर्मुख तथा अविश्वासी जीवों का ताप बढ़ जाता है। आज श्री भगवान के शुभागमन का पूर्ण प्रकाश होने से श्री भगवत चरणाश्रित अनन्य भक्तों के हृदय में आनंद का जो महान प्रवाह बहने लगा वह आनंद भोग कामना वासना भरे हृदयों के लोगों को नहीं मिला। प्राकृतिक शोभा संपत्ति की विपुलता को देखकर वे विषानंद का अनुभव करने लगे और कंसार यसुर की बहिर्मुखता भोगाशक्ति और अविश्वास से भरे उत्तप्त हृदयों में ये विषय आनंद भी नहीं ठहर सका, वरन उनका ताप और भी बढ़ गया। अस्तु श्री गोविंद का ये शुभागमन महानंद पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि नद नदी वन पर्वत आदि सभी को आनंद प्लावित कर भक्तों के हृदयों में श्री भगवत चरणों के प्रत्यक्ष प्राप्त होने के मान सुखाशा का मधुर संगीत गाकर विषय जीवों के हृदयों को विषयानंद से भरकर और बहिर्मुख जीवों के मनों को भीषण भय से प्रकंपित कर अब स्वर्ग में जा पहुंचा। जाय माने जने तस्मिन निदुर्दुंद देवी अजन्मा भगवान के जन्म आविर्भाव के समय स्वर्ग से में देवताओं की दुंदुमियां बज उठी। भगवान का शुभागमन महानंद जब भूवर लोक से ऊपर उठकर स्वर्ग लोक में पहुंचा तो एक ही साथ असंख्य देव दुंदुमियों ने बजकर अपने मधुर नाद से समस्त स्वर्ग को छा लिया। स्वर्ग में प्रतिदिन नियत समय पर देव बाधकों के द्वारा ब्रह्मताल रुद्रताल आदि तालों से देवदुंदुबियां बजाई जाती हैं, परंतु आज इस महानंद में सर्वथा स्वतंत्र होकर वे सब अपने आप ही बजने लगी। अनाहता दुंदु भयो देवानंद सदा गंभीर मध्य निशा की स्तब्धता को भंग करके समस्त स्वर्ग को रिनादित और आनंद मुखरित करती हुई वे धुंदुबियां बिना ही बजाए बज उठी। देव सभा के संगीत रस विशारद हाहू तुम्बुरवादि गंधर्व और किम पुरुषगण धुंदुबियों के इस मधुर नाद से सहसा जागृत हो गए और परमानंद पूर्ण हृदय से श्री भगवान का गुणगान करने लगे। उन्हीं के साथ साथ आनंद मत सिद्ध चारण गण भी स्तवन करने लगे। जगु किन्नर गंधर्वा सुष्टु सिद्ध चारणा गंधर्व तथा किन्नर गण देवराज इंद्र तथा देवताओं का आनंद बढ़ाने के लिए ही देव सभा में मधुरता छेड़ा करते हैं। सिद्ध और चारणों का जीवन भी देवताओं के स्तुतिगान में बीतता है, पर आज देवेंद्र वांछित चरण अरविंद सौभाग्यवती भूमि पर प्रकट होने जा रहे हैं, अतः वे भी उसके अनिवचनीय महानंद से मत होकर अपने स्वभाव सिद्ध शांत स्निग्ध मधुर कंठ से भी कई विलक्षण मधुरता और सुलीलेपन को प्राप्त होकर श्री भगवान का गुणगान करने लगे। इस प्रकार गंधर्व किन्नर और सिद्ध चारणों के मधुर सात्विक गीतों को सुनकर देव सभा के नृत्य से श्रांत और अमृत पान से प्रमत्त विद्याधरिया और अप्सराएं भी नवीन उत्साह के से आनंद जागृत होकर नए रूप में नृत्य करने लगी। आज नए रूप में नृत्य करती है विद्याधरी नृत्य अक्षरों भी सदा उर्वशी मेनकारंभादि स्वर्ग की अप्सराओं और विद्याधरियों की सारी दिन भर की नाच गान की थकावट दूर हो गई और वे प्राकृत परमानंद से परिपूर्ण होकर स्वर्ग के विलास नृत्य की सारी तालों को भूलकर श्री गोविंद गुणगान में प्रमत्त गंधर्व किन्नरों की गोविंद गुणगान की शुद्ध सत्वमयी तालों में ताल मिलाकर मधुर नृत्य करने लगी।